ओम शांति। बाबा हमको देवता बना रहे हैं, देवता थार देने वाला, परंतु संगम युग का महादान क्या है और दान किसे कहते हैं, ये स्पष्टता गहराई से समझने के लिए आज के टॉपिक दान का दर्शन और संगम युग का महादान, इसकी प्रत्यक्ष स्वरूपा देवी आदरणीय संतोष दीदी हमारे बीच में हैं। हम करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साइलेंस की साइंस को प्रैक्टिकल में लाने वाली, योग की प्रयोगी, गंभीरता व रमणीकता का बैलेंस रखने वाली, विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी आदरणीय संतोष दीदी जी का जीवन सेवा, कला और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम है। 1964 में जन्मी आदरणीय संतोष दीदी जी ने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स किया। 3 साल का एडवांस डिप्लोमा रशियन लैंग्वेज में किया, साथ ही शास्त्रीय नृत्य, पोइट्री, सिरेमिक पोट्री आदि कलाओं में भी प्रशिक्षण लिया। 1983 से 89 तक आपने भारत, विशेषकर दिल्ली में रहकर आध्यात्मिक सेवाएं की, क्योंकि बीएससी करते ही आप बाबा के बन गए थे। 1989 में ब्रह्मा कुमारीज की रशिया में सेवाएं शुरू हुई, उनको शुरू करने वाले अग्रदूतों में से आप एक रहे। तब से रूस के विभिन्न प्रांतों में सेवा केंद्र खोलने और बाबा की सेवाओं का विस्तार बेहद में करने के निमित्त आप बनी हैं। साथ ही आप डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप की निदेशक के रूप में कला और आध्यात्मिकता को जोड़कर मानवता की सेवा कर रही हैं। वर्तमान में आप सेंट पीटर्सबर्ग ब्रह्मा कुमारी सेंटर की डायरेक्टर हैं। रशिया, CIS और बाल्टिक रीजन में ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की जॉइंट रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप विश्व भर में चलने वाले 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस प्रोजेक्ट की रीजनल डायरेक्टर रही हैं और कई एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स की ऑथर और कोऑर्डिनेटर भी रही हैं, और आपकी विशेष सेवाओं के लिए कई सम्मान भी आपको मिले हैं रूस की सरकार के द्वारा भी। आपके लिए चंद लाइन कहना चाहूंगी। इल्म की रोशनी से आप अंधेरों को भी राह देते हैं, खामोश दुआ बनकर दिलों को आप सुकून देते हैं। सरहदों के परे आपकी सेवा की पहचान है, आप कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। रूहानियत की दुनिया में आपकी अनोखी शान है, रूहानियत की दुनिया में आपकी अनोखी शान है। ऐसी विशेष शख्सियत बाबा की विशेष रूहानी फूल द्वारा हम सुनेंगे दान का दर्शन और संगम युग का महादान।
थैंक यू। ओम शांति। हाउ आर यू? हैप्पी? बाबा मिलन ने हम सबको भरपूर कर दिया, और भरपूर होते 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 फिर आत्मा जो लेने वाली थी वो देने वाली बन जाती है। तो आज की सभा में दाता बैठे हैं या लेवता बैठे हैं? दाता बाबा मिलन के बाद भरपूर हो गए और दाता बन गए। तो भगवान का कर्तव्य ही है धरती पर आदि सनातन देवता संस्कृति को स्थापित करना, और देवता का मतलब ही है दाता, देने वाला। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो सीधा प्रश्न उठता है कि क्या सतयुग त्रेता में भी दान है, क्योंकि देवता धर्म है तो देवता माना क्या पोजीशन होती है, करके देखिए, ऐसा होता है ना देवता, तो इसका मतलब क्या है? आई एम फुल, आई एम फाइन, लेकिन मेरे पास आपके लिए भी है। तो क्या देवता धर्म के समय अर्थात सतयुग त्रेता में भी दान है? ऐसे तो जवाब नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ऐसे या ऐसे पहुंच पाएगा क्योंकि है या नहीं है? नहीं है, जिस रूप से हम दान को समझते हैं उस रूप से नहीं है, परंतु धर्म धर्म ही देवता वाला है। तो दाता पने का जो स्वरूप है वो है आदान प्रदान। जो हमारे संबंध हैं आपस में वो एक उत्सव जैसे बने रहें। रोज का जीवन त्योहार हो तो सतयुग के हर दिन आदान प्रदान होता है उपहारों का। आज ये उपहार लेके इनके पास जा रहे और कल वो उपहार लेके उनके पास जा रहे। तो वो जो रीति रस्म है वो हमको ये समझ देती है कि मानव समाज में चाहे वो उसका प्रारंभिक रूप देवता का था, तब से लेकर के अंत तक पूरे सृष्टि चक्र में आदान प्रदान और फिर द्वापर से दान के रूप में महत्व रहा है। तो ये जो दान की फिलॉसफी है, दान का दर्शन है, वो हमको ये स्पष्ट कराता है कि जब इतना जरूरी सिग्निफिकेंट काम हो रहा है उसके बारे में अगर हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो हमारे कर्म, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन, उसका लेवल स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम सबसे ऊंचे धर्म की आत्मा बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो है देवता धर्म। और उस समय हम प्यार से, स्नेह से, जैसे कल यहाँ पर शायद तमिलनाडु से 50 वर्ष हुआ, चेन्नई का था या मदुरई का था, मदुरई का था। तो ये जो 50 वर्ष हुआ क्या दृश्य था? दान दिया जा रहा था, उपहार दिए जा रहे थे। मधुबन से जब हम आते हमको याद सौगात मिलती तो वो क्या दान होता है? क्या होता है? नाम ही है सौगात। तो वास्तव में संगम है आधार, जहां पर ये सारा विधि विधान बनता है। हम ब्राह्मणों को दान नहीं देते हैं, हम ब्राह्मणों को सहयोग देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, खुशी होती है हमें। अभी हम लोग तो फिजिकली यहाँ कल प्रेजेंट भी नहीं थे, लेकिन हमारे कमरे में इतना सुंदर पैकेट खूब सारी टोलियों के साथ और गिफ्ट के साथ पहुंचा हुआ था। वे ताली तो बजाओ ना उनके लिए। तो अर्थात जो देवताई संस्कार है, जिसको कहते हैं कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको हम स्वीकार करते हैं, आपको हम मानते हैं कि आप हमारे हो, जस्ट अ जेस्चर ऑफ लव, कि हम आपके साथ अपने संबंध को स्वीकार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, इसलिए हमारा उपहार आपके प्रति। ठीक है, तो चाहे हम कमरे में है नहीं है, गिफ्ट पहुंच गया तो खुशी होगी? खुशी होगी कि नहीं? नहीं, क्यों इतना जल्दी ताली बजा रहे हैं? पहले सोच तो लीजिए। क्या हम दुखी बैठे थे जो हमें खुशी मिलेगी? दुखी बैठे थे क्या? नहीं, फिर भी क्योंकि ये संबंध को पक्का किया, आज दिन तक संबंध चला, लेकिन अभी आगे के लिए भी वो पक्का हो गया, क्योंकि जीवन माना अंत तक, जीवन माना एक साल नहीं। पिछले साल तो जो हुआ था, दो दिया था, कुछ टेलीफोन कर लिया, हेलो कर लिया, वो हो गया, लेकिन अभी आगे के लिए एक बार और आ गया। तो ये है देवता धर्म का स्वरूप। लेकिन आज जैसे बाबा ने कहा, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है देह अभिमान। तो जब हम देह अभिमान में आते और शरीर के द्वारा जो भी कर्म करते हैं, तो बुद्धि देह अभिमानी होने के कारण निर्णय करती है, उसमें गलतियां होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एकाग्रता बुद्धि की हिल गई। मैं एक आत्मा, पवित्र आत्मा, इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली, उसके बजाय शरीर द्वारा भोगने वाली हो जाते हैं। इंडल्जेंस जिसको कहते हैं, आंखों के सामने कुछ है, मुझे देखना है, मुझे मजा आ रहा है, ये चीज है, मुझे टच करनी है, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे और भी चाहिए, इसको कहते लिप्त हो जाना, इंडल्जेंस हो जाना। तो जैसे ही बुद्धि लिप्त होती है तो उसकी एकाग्रता लोप हो जाती है। फिर अंत में जाते जाते उसकी दिव्यता प्राय लोप हो जाती है, दैवी धर्म ही प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि देवता माना ही दिव्य बुद्धि। तो बुद्धि से नीचे जब गिरना शुरू हुआ तो जरूर द्वापर से लेकर आगे तक समाज में फिर कोई ना कोई इस प्रकार से वर्ग बनना शुरू होता जिसको कमी पड़ती जाती। तो एक दो के प्रति दया, उपकार, करुणा, सहयोग की भावना के कारण उस समय से दान का महत्व हेल्प करने, सहारा देने के रूप में शुरू होता है। उससे पहले वो सिर्फ उपहार का आदान प्रदान था दोनों तरफ से, और द्वापर से फिर ये शुरू होता है। तो अब ये कोई छोटा समय तो नहीं है, दो युग हो गए, 1250 साल द्वापर युग और 1250 साल कलयुग के। तो कितने प्रकार के दान मानव समाज में 2500 साल में दिए गए हैं, कितने प्रकार के दान। जैसे जैसे समय बदलता गया दान की भी लिस्ट बड़ी होती गई, और किन किन वृत्तियों से दान दिया गया है, किन किन चीजों का दान दिया गया है, वो भी विस्तार को पता गया। लेकिन दान का जो लक्ष्य रहा वो यही रहा कि जो हमारे से कम प्राप्ति वाले हैं उनको हम कुछ न कुछ सहारा दे सकें, मदद दे सकें, उनका भी जीवन ठीक हो सके, लक्ष्य तो ये था। तो आज 2500 साल बीत गए, हजार प्रकार के दान हैं, लेकिन क्या समाज फिर से भरपूर संपन्न स्थिति को पाया पाया? क्या कम दाने हैं भारत में? कम दाने हैं दुनिया में? भारत को डेवलपिंग कंट्री समझते हैं, अर्थात जो अभी उन्नति को पा रहा है, उन्नत नहीं समझते। कुछ देश अपने को डेवलप्ड कंट्री की है, उसका कोई पैरामीटर, वो उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दान विश्व में सबसे ज्यादा करने वाले कहां पर हैं? इस भारत भूमि पर। लेकिन फिर भी हाँ हाँ इसमें ताली बजा सकते हैं, क्यों? क्योंकि देवता धर्म की स्थापना जो है वो कहां हुई, संस्कार कहां बनाए गए? यहां पर बनाए गए। तो अब जब हमने हर प्रकार के दान लिए और किए, एक बार उसको भी रिवाइज कर लें, सबसे पहला पहला दान किस चीज का शुरू हुआ होगा? अगर हमने देवता धर्म को छोड़ो, सत्युग त्रेता को छोड़ो, जब कमी आनी शुरू हो गई, तो सबसे पहला पहला दान किस चीज का शुरू हुआ होगा? क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो गई, जिसको हम मिनी डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जो द्वापर और त्रेता के बीच में होती है, जो सारी संपन्नता है समुद्र के नीचे चली जाती है, महल खत्म हो जाते हैं, हीरे जवाहरात खत्म हो जाते। तो मुख्य दान सब दानों से जो नंबर वन माना जाता, वो खाद्य पदार्थों का अन्नदान। तो जरूर उस रूप में ही हमने समाज में सबसे बड़ी मदद एक दो को करनी शुरू की होगी। लेकिन साथ साथ कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, फिर ये फिर से प्राकृतिक आपदाएं ना आए और हर कोई भरपूर हो सके, तो साथ साथ विद्या दान भी हमेशा से चलन में रहा। द्वापर के 500 साल होने के बाद और धर्म भी जब आते गए, जब अलग धर्म, अलग राजाई, अनेक राजाई, तो युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो कोई की हार, कोई की जीत। और अगर हार मानने वाले ने, जिसकी हार हो गई, उसने थोड़ी क्षमा मांगी, तो अभय दान भी हुआ, जीवन दान, सुरक्षा दान, क्षमा दान। और फिर धीरे धीरे और समाज में पॉपुलेशन जब बढ़ती चली गई, तो आजकल क्या करते हैं, अस्पताल का दान, पाठशाला, स्कूल, कुएं बनाना, ये सब सैकड़ों प्रकार के दान, राइट? आप लोगों में से कौन है जो ईश्वरीय ज्ञान से पहले भी किसी न किसी प्रकार की दान प्रक्रिया से जुड़े रहते थे? हाथ खड़ा करें। लगभग 90% तो होंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकता। कन्याओं के पास अपने पैसे नहीं होते, लेकिन खर्ची में बचाकर कुछ तो दान करते होंगे। कोई सामने आ जाता है तो क्यों नहीं करते थे? जी, गुड। तो ये अनेक प्रकार के दान, उसमें फिर महत्व रहा क्वालिटी का। तो जिन्होंने गीता पढ़ी है और बाबा की जब आप मुरली सुनते हैं, बाबा ने तो पूरी दान की स्पष्टता दी है। लेकिन गीता में भी वर्णन आता है कि दान भी तीन प्रकार का है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। अब क्योंकि गीता में तो आधार श्रीमत है, भगवान की श्रीमत प्रमाण ही गीता की रचना बाद में हुई है, तो अब सात्विक दान में क्या स्पष्टीकरण मिला हुआ है? जो उचित समय दिया जाए, जिस समय मेरा मूड बन रहा है उस समय नहीं, जिस समय उस दान की आवश्यकता है, उचित समय, उचित स्थान और योग्य पात्र को, तीनों चीजों का मैच होना जरूरी है, उसको ही सात्विक दान कहा गया है। और इस सात्विक दान की वृत्ति बिना किसी प्रतिरूप के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी नाम मान शान की आशा से, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि ये चाहिए और इसको चाहिए, इस पात्र को चाहिए, पात्र है वो उसका उपयोग करेगा और अपने जीवन में उन्नति को पाएगा। सात्विक दान। राजसिक दान में भी जरूर ही ध्यान रखा जाता है किसको करना है, पात्र को करना है, लेकिन उसमें प्रवृत्ति बदल जाती है। प्रवृत्ति में क्या आ जाता, मुझे नाम मिले, मुझे जाना जाए, मालूम पड़े किसने किया है। होता है ना, हॉस्पिटल बना दूंगा लेकिन नाम मेरा लिखना, कुर्सी दे दूंगा, है ना, रेलवे स्टेशन पर होता है ना वो चेयर्स और कुछ, लेकिन नाम हमारा उस पर लिख देना। पार्क बनवा दूंगा, बच्चों के लिए झूला बना दूंगा, लेकिन मेरी दादी जी का नाम लिख देना उस पर। तो ये सब शुरू हो गया, इट्स फाइन, क्योंकि अच्छा लगता है हमको लोग जाने कि किसने बनाया। फिर भी इसको मर्यादा के अनुसार राजसिक कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि कोई भी प्रकार की एनर्जी इच्छा वाली आपको थोड़ा नीचे कर देती है। बिना किसी लालसा के इच्छा के कर्तव्य करना, साक्षी होकर करना, ये सर्वोच्च श्रेणी का कर्म माना गया है, श्रेष्ठतम, बिना स्वार्थ के, है ना, यही है ना ईश्वरीय ज्ञान भी, तो गीता में भी वर्णन आता है। तो तीसरा है तामसिक, उसमें स्थान की भी सावधानी नहीं और पात्र की भी सावधानी नहीं, किसी को भी बिना जाने समझे, हो सकता है अनुचित पात्र हो, अनुचित स्थान हो और श्रेष्ठ वृत्ति से नहीं, कोई ना कोई अपनी ऐसी कामना को पूरी करना जो वो खुद भी श्रेष्ठ नहीं है लेकिन फिर भी दान किया है, क्योंकि उसके बिना उनका रास्ता खुलता नहीं है, तो उसको तामसिक दान कहा गया है। उसकी डिटेल में जाएंगे तो आंखें ऐसे खुल जाएंगी कि क्या हो रहा है कलयुग में। दिखने में तो दान है लेकिन फिर उसका प्रयोग कैसे हो रहा है। तो ये कैटेगरीज हैं और भावनाएं हैं, लेकिन 2500 साल तक नीचे ही आते गए। तो परमात्मा को जब खुद आकर के इस सृष्टि को फिर से देवता धर्म दाता की सृष्टि बनाने के लिए जब हमें पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है, तो उसके अंदर भी मुख्य समझ और मुख्य लक्ष्य बाबा यही देते, दानी बनो महादानी बनो, दानी बनो महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। तो एक मात्र निराकार शिव परमात्मा धरती पर आके हमें ये नवीन नूतन दान की कला सिखाते हैं, और वो दान है गुण और शक्तियों का दान। किसी भी जगह पर आप चले जाओ, अनेक प्रकार के दान की बातें हैं और किया जाता है, लेकिन दीर्घकालीन उसका प्रभाव, लंबे काल तक उसका प्रभाव रहना असंभव है। भोजन कब तक चलेगा, पैसा कब तक चलेगा, जो थोड़ा मकान बना के दिया कब तक चलेगा, हाँ शिक्षा दी तो थोड़ा ज्यादा चलेगा। तो इसलिए भगवान ने आकर के कहा कि बच्चे, परमात्मा झोली फैला करके बच्चों के सामने खड़ा है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान। आगे गाइए, गाइए, प्यार से गाइए। हाँ थोड़ा अलग हो गया लय, 1 2 3। भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तो वो जो भगत के सामने खड़ा हुआ, तो भगवान को किस चीज की कमी है, वो जो हमारे सामने झोली फैलाएगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए, फिर से नई दुनिया बनाने के लिए पहला पहला दान उसने हमसे कौन सा मांगा, किसका? वो चीज जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही है, खाली कर रही है, बीमार कर रही है। काम विकार जिसके जीवन में हो, क्या वो स्वस्थ रहने की कामना कर सकता है? कामना भले कर सकता है, लेकिन रह सकता है? क्रोध हो तो भरपूर रह सकता है, सूख जाएगा, लड़ झगड़ के खत्म हो जाएगा। लोभ मोह अहंकार वाला कभी भी शांत सुखी स्वस्थ भरपूर नहीं रह सकता। और भगवान को अपने बच्चों को ऐसा बनाना है, तो सबसे पहला दान बाबा ने हमसे लिया, पांच विकारों का दान। तो मधुबन में कौन पहुंचा? मधुबन में कौन पहुंचा? जिसने ये पहला पहला दान दे दिया। तो वो जो जगह खाली हो गई, जो बुद्धि के अंदर ये इतनी गंदगी थी, वो खाली हो गई, तो उसके खाली होते हुए उसका जो कारोबार था, विकारों के कारोबार में विकारों के संबंध भी आते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग जो हमारे साथ विकारों के कारण थे, वो हमको गुड बाय कह के हमसे जाने, क्योंकि अब हम उनके लिए यूजलेस हैं। अब हमारे जीवन में काम नहीं, क्रोध नहीं, अब हम उनके लिए यूजलेस हैं। तो अर्थात हम हल्के होते चले गए। जब ये आत्मा बाबा को समझ गई, और उस समय तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो ब्रह्मा कुमारी तो जीवन में बचपन से था, लेकिन जिसको कहते हैं ना ज्ञान अंदर चला जाए और आंखें खुल जाए, वो जब ग्रेजुएशन पूरी की तो एकदम परमात्मा आ गया, वो दिखाई पड़ रहा है, बस अब तो आप हो और मैं हूँ, बस कुछ नहीं। जब वो स्टेज आई थी, नहीं अभी ताली नहीं बजाओ, अभी आगे बजाना, तो जब वो हो गया तो बाबा तो साहब, तो क्या आप कभी किसी के साथ कभी बेईमानी वाला व्यवहार कर पाएंगे? जब भगवान आपके दिल में बैठ गया, क्या कभी आप किसी के साथ झूठा व्यवहार कर पाएंगे? क्या आप मुखौटा डाल पाएंगे? और पहले तो क्या समझते थे, हम तो बहुत होशियार हैं, बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, ड्रेस डालेंगे, बाल बनाएंगे, क्या नहीं करेंगे, है ना, प्रेसिडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये है वो, ऐसे करके। और जैसे ही बाबा आया, आत्मा आत्मा, लेकिन नहीं अभी ताली नहीं बजाओ, लेकिन वो जो जितने भी लोग थे आसपास, वो इस कारण से कि आप लड़की हो और वो ऐसी हो और ऐसे श्रृंगार करती हो और ऐसे ड्रेस डालती हो, तो सैकड़ों लोग आसपास थे जिसको फ्रेंड्स कहते हैं, वेल विशर्स कहते हैं, कलीग्स कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, तो वो सब बहुत बड़ा ग्रुप। वो एक हफ्ते में, एक मास में सब गायब। जैसे आप आत्मा हो गए तो बाबा से बातचीत शुरू हो गई, बाबा अगर आप मेरे साथ हैं तो क्या ये सब मेरे साथ नहीं होंगे, ये सब छूट जाएंगे? क्योंकि फ्रेंड्स कितना दिल को प्यारे होते हैं, फ्रेंड्स अच्छा लगता है हमें, वो कितना सपोर्ट सिस्टम होता है। कोई अफसोस नहीं था, लेकिन समझने को मन कर रहा था कि ये क्या हो गया। पहले तो दिन में 100 फोन आएंगे और लाइन लगी रहेगी आपसे मिलने के लिए। अब क्या हमारी किसी को जरूरत नहीं है क्या? तो उस समय ये फायदा होता था, हर गुरुवार को भोग लगता था, तो बहुत सारी संदेशियां थी सेंटर्स पर, दिल्ली में तो कई स्थानों पर थे। तो उस समय भोग में हम बाबा को अगर कोई अपना मैसेज देना है, प्रश्न देना है, तो बड़े आराम से दे सकते थे। तो पत्र लिखा बाबा को, ये उसमें बात लिख दी कि बाबा ये क्या, ये तो सब छोड़ के जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मैं तो अकेली हूँ, अकेली हो गई। तो बाबा ने बहुत प्यार से गहराई जो समझाई, ऐसी आंख खुल गई, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अभी बताया कहाँ है, क्या आपको जल्दी है ताली बजाने, अभी बताया कहाँ है। तो वो गहराई क्या थी, तो बाबा बोले, संदेशी ने जो संदेश लाया कि बच्चे जब गंदगी से भरे कमरे को बहुत समय से साफ नहीं किया, बदबू आ रही थी, तो सब तरफ से जो गंदगी हटाई, बिल्कुल साफ किया, तो सबसे पहले पहले कमरे में से कौन भागता है? जैसे ही गंदगी हटाई तो मच्छर, मकौड़े, कीड़े, मक्खियां, सब ये भाग जाते हैं। तो बच्चे जो भाग गए वो कौन थे? तो बाबा ने हल्का कर दिया कि सचमुच अब हमें लग रहा है हम इतने अच्छे हो गए, अब हम इतने पवित्र हो गए, अभी हमें किसी को ये झूठा झूठा व्यवहार करने की कुछ जरूरत नहीं लग रही है, और अभी ये लोग हमको छोड़ गए, पहले हम इतने खराब थे तो ये हमारे साथ थे, अब समझ आ गया। तो लेकिन अब जो शुरू हुआ, जब हमने दान दे दिया विकारों का, तो फिर नया संबंध, नई वृत्ति से नया संबंध वो सेवा का, मेरे फ्रेंड्स के रूप में नहीं, परमात्मा की संतान और मुझे सब बाबा के बच्चों को बाबा के नजदीक लाना है। तो जब बाबा ने हमें दान की बात सुनाई तो वो महादान है गुणदान और शक्तिदान। हाँ अब बजा लो। तो वो धीरे धीरे जब लोगों को मालूम पड़ा कि पहले तो 365 दिन काली ड्रेस डालती थी, अब ये व्हाइट ड्रेस डालती है, कंट्रास्ट तो देखो कितना हो गया। अच्छा व्हाइट ड्रेस डालती है और कोई वो भी नहीं है, ज्वेलरी नहीं, रिंग नहीं, घड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम से ऐसा और इतना खुश है। तो वो धीरे धीरे सेंटर पर आके देखने आने लगी कि ये हुआ क्या है, ब्रह्मा कुमारी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया है। और तब उस समय तक कोई ज्ञान सुनाना तो सीखा ही नहीं था, बस बाबा से प्यार हो गया था, ज्ञान तो सीखना पड़ता है ना, मनन करना पड़ता है सुनाने के लिए। तो बस वो लोग आते थे बचाने के लिए कि कोशिश करते इसको निकाल लो यहाँ से, लेकिन वो आए और यहाँ पर देखते थे वो वैसे तो ऊपर है भगवान के प्यार में, ऐसे वो फिर डर के भाग जाते थे कि इसको बोलें क्या हम, क्योंकि ना दुखी, पहले तो समझते हैं ना कोई धोखा दे देता है तो बेचारी कन्या परेशान होके भगवान की हो गई, स्कूल के भी टीचर्स ने यही कॉलेज के प्रिंसिपल ने यही समझा, उन्होंने बुलाया बात करने के लिए कि आप क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको तो आगे मेडिकल में जाना था, एमएससी में जाना था, आप तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप भले थोड़ा 60 साल की उम्र में ये कर लेना, अभी तो आप 18 के हो, प्रिंसिपल बात कर रहा है, और यहां तो ऑलरेडी मर गया है व्यक्ति, क्योंकि वो तो शरीर को देख रहे हैं ना, और है कौन? आत्मा। तो मैंने बहुत रिस्पेक्ट से बात की, पूछा, सर अगर आपको प्रेसिडेंट से मिलने जाना होगा तो आप कौन सा गुलदस्ता लेके जाएंगे, ताजा या मुरझाया हुआ, बासी? कहते ऑफ कोर्स फ्रेश, ताजा लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं भी अभी फ्रेश हूं ना, तो अभी मुझे भगवान मिला है, तो मैं उसको अभी अगर नहीं दूंगी अपना जीवन, उस समय 18 का था, और जब मैं 18 में नहीं, अभी नहीं दूंगी, और 60 में जब मेरे दांत भी टूट जाएंगे, कमर भी झुक जाएगी, और मैं उसको बोलूंगी आई लव यू, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं उसको प्यार करती हूँ, तो वो फिर इससे अच्छा है ना मैं अभी दे दूं। वैसे अभी 60 साल का ये हो गया है शरीर, तो हमारा जो जीवन है, अगर उस समय बाबा की सेवा में ना लगा होता तो क्या होता इस जीवन का। तो इतने साल परमात्मा ने जीवन को अपने सेवा के कार्य में लगा करके कहां से कहां आत्मा को पहुंचा दिया। तो वो फिर जब उन्होंने वो चेहरा देखा कि ये किसी के प्रभाव में आकर के निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ये आत्मा को भगवान मिल गया है, इन्होंने जान लिया है, और अब ये रुकने वाले नहीं है। तो ये जो दान है, क्योंकि ज्ञान तो दिया नहीं उसको, लेकिन फिर भी उनको ये अनुभव हो गया। किससे अनुभव हुआ? वो दृढ़ता का जो था, गहरे अनुभव का, से जो निश्चय आया, तो निश्चय का गुण परमात्मा को निश्चित रूप से प्रत्यक्ष करता है। और निश्चय माना मैंने अनुभव किया है, कोई के कहने से मैं यहां नहीं हूं। अगर कोई के कहने से होते तो कब के चले जाते? अभी बाहर रह करके भी 36 साल हो गए, कोई हमको देखने आता है क्या, क्या कर रहे हैं, तन मन धन कैसे लग रहा है? लेकिन क्या निश्चय है? बाबा देख रहा है, बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा ने बिठाया, और एक एक सेकंड का हिसाब बाबा के पास है। मैं एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवा सकती हूं, बाबा देख रहा है। यहां से तो कोई बड़े नहीं है ना, वहां पर देखने वाले बड़े होते हैं, आप थोड़ा सावधान रहते हो, लेकिन नहीं है। तो निश्चय, और उसके बाद नशा। तो निश्चय का दान ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। नशा, और नशे से आती है खुशी। किस चीज की खुशी और किस चीज का नशा? हम क्या हैं? क्या थे जब भगवान के पास आए थे? तो कुछ हमारे पास ऐसा विशेष था जिसके कारण भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़े? साधारण थे, लेकिन फिर भी परमात्मा ज्ञान के पात्र बने, ईश्वरीय विद्यार्थी बने। और कुछ दुनिया में मिले न मिले, लेकिन भगवान का ज्ञान मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसमें ताली बड़ी ढीली बज रही है, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान है। अब ये तीन कान से सुनने वाली बात है, अगर ये ज्ञान हमारे पास है तो आप बिना किसी चीज के कहीं पर भी जाओ, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएटर का ज्ञान है। जब हमें बाबा ने भेजा वहां पर, निमित्त तो दादी हैं, जगदीश भाई साहब, गुलजार दादी जी, कल उनका दिन मना रहे हैं हम, तो निमित्त वो बन के उनके मुख से ये असाइनमेंट मिली कि वहां जाना है। तो क्या था इस मुट्ठी में, बुद्धि में ज्ञान के बीज, और मधुबन से हमको क्या मिलता है, 7 जोड़ी कपड़ा। बहनों की जोड़ी में क्या क्या आता है वो तो पता है ना, साड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और ये पूरा 7 जोड़ी कपड़ा। और बाहर सेवा के लिए जा रहे हैं तो 7 चित्र, 7 जोड़ी कपड़ा, 7 चित्र, मुट्ठी में ईश्वर ज्ञान और दिल में मीठा बाबा, बस उड़ गए, कुछ नहीं और था, कुछ नहीं। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारी को शौक है दुनिया में अपना विस्तार, ये विस्तारवाद का नहीं, तो भगवान ने भारत की बेटी को विश्व को दान किया, कन्या दान किया। तो जब कन्या दान किया, तो कन्या दान किया तो साथ में बाप बन के दान किया और साजन बन के साथ चला, ठीक है, समझ रहे हैं? तो जब साजन के साथ गए तो रचना भी तो रचेंगे, जितना ज्यादा प्यार होगा उतना ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। तो कितने सारे बच्चे पैदा हो गए, 70 सेवा केंद्र अब तक खुले हैं। हमारी दूसरी बहन भी हैं, आप जानते हैं, सुधा दीदी भी हैं, चक्रधारी दीदी, तो शुरू शुरू में जाकर के सबसे पहले वो गए। तो जब वहां पर पहुंचे, भगवान के साथ ये संबंध जो जुड़ा हुआ था उससे जो रचना हुई, बाकी तो कुछ नहीं था। अब शिव निराकार है, उसको तो फ्लैट भी नहीं चाहिए, उसको तो खाना भी नहीं चाहिए, उसको अपनी इसके लिए सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसके लिए उसको मकान बनाना पड़ता है। तो निश्चय और नशा, मैं किसकी साथी हूं, मेरा कंपेनियन कौन है, वो नशा जब वहां के लोगों ने देखा, क्योंकि इस शरीर की आयु तो उस समय 25 साल थी सिर्फ, तो दिखने में भी वैसे छोटे लगेंगे। और वहां पर वो लोग जब पूछते थे कहां से आए हैं, ब्रह्मा कुमारी इज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, अभी टैक्सी वाला ले जा रहा है, वो फिर अपना शीशा ऐसे सेट करके पीछे से देखता है, अच्छा ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल, अच्छा किस लिए आए हो, यूनिवर्सिटी की, ज्ञान की और उसके सेंटर की स्थापना करने। तो फिर वो शीशा सेट करके देखता है और कि सचमुच ये इनको होश है कि ये क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री जहां पर भगवान का नाम ही नहीं लेते, और ये इतना सा छोटा सा कोई व्यक्ति आके आया है यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारी स्थापन करने, और ज्ञान वो ऐसे, आर यू श्योर, आर यू, यस, क्यों, क्योंकि हमें पता था ये हम नहीं कर रहे हैं, वो इसको देख रहा है लेकिन बाबा को तो नहीं दिखाई दे रहा। और फिर जब नशा दिखते, अच्छा ठीक है, हम ना आप अपना नंबर दो, हमारे बहुत से लोगों को योग बहुत अच्छा लगता है इंडिया का, और उनको इंडियंस भी बहुत अच्छे, तो हम उनको सबको आपके पास भेजेंगे। तो नशा जो है वो हमारे निशाने को स्पष्ट दिखाता है। तो इस ईश्वरीय खुशी का दान चेहरे और चलन द्वारा, क्योंकि ज्ञान तो नहीं सुन रहा ना वो टैक्सी में, और अभी तो जीरो है, अभी तो कुछ ज्ञान का प्लेटफॉर्म ही नहीं तैयार हुआ, तो कौन सा दान देना पड़ेगा उस धरती को, निश्चय, नशा, खुशी, और साथ साथ में अति निस्वार्थ रहम से भरा हुआ ईश्वरीय स्नेह। कि बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं। ये नहीं कि मैं किसी दूसरे देश से आई हूं, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी निमित्त बने हुए किसी भी विश्व के स्थान पर कुछ लेने के लिए नहीं गए हुए हैं, सिर्फ देने के लिए गए हुए हैं। लेना है तो विकार लेना है, उनके अवगुण लेने हैं, उनकी कमियां लेने हैं। और जितना जितना ये वो देते जाते हैं तो उनके जीवन में भरपूरता आती जाती है। तो आज दो तीन दिन पहले जब बाबा ने मुरली में हम बच्चों को ये समझाया और अभी अव्यक्त मिलन में भी जब होली खेली तो फिर से ये अंडरलाइन कराया कि चेहरा और चलन और मन की स्थिति इतनी खुश हो, इतनी भरपूर हो, जो देख करके मालूम पड़े ये कौन है। तो ऐसी सेवा विश्व में करने के लिए सब तैयार हैं? हैं तैयार। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व कहां पर आने वाला है? सतयुगी देवी देवता धर्म कहां पर स्थापन होगा? राजाई कहां शुरू होगी? राजधानी कहां बनेगी? यहां आगे तो ये हम भारतवासियों की संस्कृति है, सदा संपन्न चेहरे से और दृष्टि में ईश्वरीय चमक से भाग्य की तकदीर को जगाना, तस्वीर को बनाना। और इसके लिए हमें मदद करती है रोज की पढ़ाई। रोज की पढ़ाई हमें इंस्पायर करती है महादानी बनने के लिए। हमारी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम माताओं बहनों भाइयों से मिलते हैं, वो लोग जब आकर के कि अपने पास कितना है कितना नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन वो जब भी मिलने आएंगे उनके हाथ में एक तो चेहरे पे मुस्कान होगी, बहुत रिगार्ड होगा कि ये बाबा के निमित्त बने हुए बच्चे हैं, वो इतना रिगार्ड होगा, और हाथ में चाहे उसमें 100 रुपए होंगे लेकिन खाली हाथ वो कभी नहीं मिलते। उस समय थोड़ा भारी भी लगता है कि देखो वहां भी मिल के आए, वहां भी और ये भी, तो मैं तो बहुत नहीं 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 नहीं, आप इसको पीछे रखो, आप भले गले लग लो, आप मधुबन आए हो सो करना है सो करो, जरूरी नहीं आप हर जगह लिफाफा मत कर। ना 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 ना, बाबा ने दिया है ना, ये मेरा, ये किसने बनाया दानी, कितनी भावना है। कुछ समय पहले ओआरसी से हम लोग आ रहे थे, पटौदी स्टेशन है वहां पर, तो मैं और एक और सिस्टर थी, तो गाड़ी आ चुकी थी, बस हम अपने डिब्बे की तरफ चल रहे थे, बहुत तेज आवाज आई पीछे से, दीदी। तो इधर देखा तो एक माता जो स्टेशन पर सुबह के समय सफाई करती थी, वो शायद नजदीक के गांव में गीता पाठशाला में जाती थी, तो उसको पता तो नहीं था कि कोई होगा स्टेशन पर, तो वो ऐसा दुपट्टा होता है ना माताओं का, वो इधर उसका इधर यहाँ पर ऐसे गांठ में उसके पास में 100 का नोट बंधा हुआ था। वो दीदी रोका, मधुबन जा रही हो? हाँ, अब मेरा ये लेते जाओ बाबा के घर में, बाबा के घर में भोग लगा देना। तो उसका तो उसके बाद आंसू तो खैर रुक नहीं रहे थे, लेकिन शरीर का रोम रोम का, बाबा आपने अपने बच्चों को इतना महादानी बनाया, अपने उसके पास अभी क्या होगा जो सुबह सफाई करने आई है और उसमें से भी 100 निकाल करके पता पड़ा है कि कोई मधुबन जा रहा है। तो ये कौन सिखाता है? ये हमारे जीवन को इतना भरपूर कौन कर देता है जो हम डरते नहीं है कि मेरा क्या होगा? क्योंकि सब प्रकार के दान में श्रम दान स्वयं का दान, समय का दान। अब हम सब, हम कोई पगार लेके यहाँ पर बैठे हैं? पगार लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो इसको श्रम दान कहा जाएगा, समय दान कहा जाएगा, स्वयं सेवक है। लेकिन ये देना नहीं है। सेवा करते करते हमने अपने शरीरों को अति सूक्ष्म बनाया, पवित्र बनाया, स्वच्छ बनाया। क्यों? क्योंकि जो भी पाप कर्म थे वो सेवा करते करते कटते गए, योग लगाते लगाते कटते गए, और हमें फरिश्ते जैसी हमारी काया बनती जाती है, हल्की होती जा है। अनुभव किसको है? अनुभव कि फरिश्ते बनते जा रहे हैं। हाथ खड़ा करें जो नहीं कर रहे, क्या मतलब हो गया? बनते जा रहे हैं ना फरिश्ते। वो कारण क्यों? क्योंकि सेवा जो है वो सदगति कराती है, सच्ची सेवा। सेवा में जरा सा भी स्वार्थ होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो गुणदान, शक्तिदान, हमारी निर्णय की शक्ति। क्योंकि वैसे तो कन्या को देख करके बिना गहनों के वाइट ड्रेस में, वो जो बहुत देह भान वाले लोग हैं वो तो दया करेंगे ना, बिचारी है ना, ऐसे शक्ल बना के बिचारी। लेकिन मुझे कोई बेचारा कहे, सवाल नहीं पैदा होता। तो वो जो हमारी विल पावर है कि हमने इस जीवन को सर्वशक्तिमान के साथ साथी बना करके जोड़ा है, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है, वो विल पावर कण कण से दिखाई दे, ये है शक्तिदान। जिसको देख के 100 और हमारी पूंछ पकड़ के पीछे लग जाएं, हम भी, हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ अपने साजन से, समझ रहे हैं? तो ये दान, ये ज्ञान से नहीं दिया जाता, ये अपनी जीवन से दिया जाता है। तो ऐसे प्रेरणा लेकर के हमको मधुबन से जाना है और फिर जाकर के हरा भरा अपने परिवारों की ऐसी सेवा करके, परिवार फर्स्ट, फिर समाज की सेवा करके जहाँ सेंटर पर हमारी जिम्मेवारियां हैं, करके फिर भाग भाग के मधुबन में आ जाना है। ओम शांति। ठीक है, चलिए तो अभी मीठे बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा को थैंक्स करते हैं जो हमें ऐसा जीवन बाबा ने दिया।
शांति दीदी, आपने इतने अच्छे अनुभव जो आपकी ब्राह्मण लाइफ के रहे, किस तरह से हम दाता बने, क्या स्वमान रखें, कैसे निश्चय और नशा रहे, वो सब आपने इतने सुंदर तरीके से हम सबको दिल छूने वाली जो क्लास कराई या आपने अनुभव साझा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करतल ध्वनि से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार सभी खड़े होकर करतल ध्वनि करेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। थोड़ा समय ऐसा है जिस समय नींद आती है, अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाए। और थोड़ा सा अपने ही स्थानों पर खड़े होकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। दीदी आपको स्ट्रेचिंग कराएंगे, आप सभी करेंगे। नहीं, अभी नहीं।
एक बार फिर आपको पकड़ना पड़ेगा,
इसलिए मैंने बोला स्टार्ट किया।
चलो यहाँ साइड पर
1, 2, 3, 4. आप भी करिए 1, 2, 3, 4. अभी दूसरे मोहन भाई जी नहीं आए, वो भी करें एक्सरसाइज. आइए 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. अभी पीछे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अभी इसको आगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अभी दोनों को इकट्ठा आराम से, जल्दी से नहीं. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ठीक है, हो गया आपका खुशी की डांस. अभी लास्ट, रुको रुको, अभी लास्ट. चलो अभी यहां से शुरू किया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अभी पैर उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. हो गया. अच्छा अभी हाथ हमारे ऐसे, इसको यहां लाना है और गर्दन को यहां. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ठीक हो रहा है सबका? इधर हाथ और गर्दन उल्टी डायरेक्शन में, इधर हाथ. ठीक है 1, 2, 3, 4. ये बैलेंस के लिए टेस्ट है. अगर हमारा मेंटल बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, तो ये नहीं हो पाएगा. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. गुड. चलिए अभी आइए एक आप करिए. अभी हम एक भाई साहब के साथ करेंगे, जस्ट वन. हम सबसे सुंदर एक्सरसाइज साथ में करेंगे. ठीक है, वो ये वाले सहज है, सबके लिए जरूरी है. आराम से, रॉयल्टी से. अभी वापस. ठीक है, तो हम जो यहां तक पहुंचे थे ना, अब उसको हम पूरा करेंगे. इसकी बजाय हम हाथ यहां रखते हैं. ठीक है, अभी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अभी जो कंधे हिलाए और पैर हिलाए, अब सबको इकट्ठा करेंगे. ठीक है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अब पूरा हो गया, आपके साथ पूरा हो गया.
थैंक यू.